अध्याय 4 परमेश्वर ने शैतान को नष्ट क्यों नहीं किया। वो कौन सी बात है जो मनुष्य को जानवर के स्तर तक गिरा देती है? ये तब होता है जब वो केवल उसके शारीरिक जरूरतों और सांसारिक अस्तित्व में ही रुचि रखता है। एक जानवर की रुचि किस बात में होती है? भोजन, नींद और यौन संतोष, बस यही सब कुछ है। और जब एक मनुष्य केवल इन्हीं बातों में रुचि रखता है, तब हम कह सकते हैं कि वह जानवर के स्तर तक गिर चुका है। परंतु परमेश्वर ने मनुष्य को मात्र जानवर जैसे जीने के लिए नहीं बनाया। शिक्षा मनुष्य को जानवर से बेहतर नहीं बनाती, क्योंकि यहां तक कि पढ़े लिखे लोग भी कभी कभी जानवरों जैसा व्यवहार करते हैं। हमारा एक अंग है जो हमारे मन से भी ज्यादा गहरा है, इसे आत्मा कहते हैं। हमारी आत्मा हमें परमेश्वर के विषय में बोध कराती है। जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया तो उसने उसे स्वतंत्र इच्छा के साथ बनाया। उसने मनुष्य को चुनाव करने की स्वतंत्रता भी दी। जब शैतान को स्वर्ग दूत के रूप में बनाया गया था तो वो भी चुनाव की स्वतंत्रता के साथ बनाया गया था। इसीलिए वो कह सका, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारांगण से अधिक ऊंचा करूंगा। परमेश्वर ने और भी कई बातों की निर्मिति की जिनके पास स्वतंत्र इच्छा नहीं थी। उदाहरण के लिए तारे और ग्रह। हमारे सौर मंडल में ग्रहों ने भी कभी हजारों वर्षों में भी परमेश्वर के नियमों का उल्लंघन नहीं किया है। क्यों? क्योंकि उनके पास इच्छा की स्वतंत्रता नहीं होती और ग्रह परमेश्वर की संतान नहीं बन सकते। किसी भी व्यक्ति को परमेश्वर की संतान बनने के लिए उसे उसकी मर्जी के अनुसार चुनाव करने की इच्छा के साथ बनाया गया। परंतु चुनाव करने की स्वतंत्रता में एक खतरा यह है कि आप इसका उपयोग स्वयं को प्रसन्न करने और परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करने के लिए कर सकते हैं। परंतु परमेश्वर ये जोखिम उठाने के लिए तैयार था, क्योंकि वह आज्ञाकारी संतान चाहता था। और यही क्षेत्र है जहां शैतान भी परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा करता है। संसार में सारी गड़बड़ियां, दुविधाएं, बीमारियां और बुराइयां मनुष्य के द्वारा परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन और अदन की वाटिका में शैतान की बात सुनने का सीधा परिणाम है। तब हम ये प्रश्न पूछ सकते हैं, यदि संसार की सभी समस्याओं की जड़ शैतान ही है तो परमेश्वर ने उसे नष्ट क्यों नहीं किया? हाँ, मैं आशा करता हूं कि हम कम से कम ये विश्वास तो कर सकते हैं कि परमेश्वर का ज्ञान हमसे ज्यादा है। हमारी बुद्धि पानी के एक छोटे कप के समान है, जबकि परमेश्वर की बुद्धि एक समुद्र के समान है। हम इस बात का निश्चय कर सकते हैं कि यदि परमेश्वर ने शैतान के अस्तित्व को और पृथ्वी पर क्रियाशील होने की अनुमति दी है, तो निश्चय ही इसके पीछे कोई अच्छा कारण भी होगा। वास्तव में शैतान की क्रियाओं के द्वारा परमेश्वर बहुत से कार्यों को करता है, इसीलिए उसने उसे अस्तित्व में रहने की अनुमति दी है। संसार में परमेश्वर शैतान को इतनी बुराइयां, नुकसान और क्लेश क्यों करने देता है? इसका एक कारण यह है कि लोग परमेश्वर की ओर फिरे। क्या आप इस बात को मानते हैं कि यदि पृथ्वी पर जीवन अति आरामदायक, रोग रहित होता, गरीबी न होती, मुसीबतें न होती, तो ईश्वर के विषय में शायद ही कोई सोचता? परमेश्वर जिस बात की अनुमति देता है उसके पीछे कोई ना कोई उद्देश्य होता है। पुराने नियम में हम पढ़ते हैं कि जब जंगल में इसराइलियों ने परमेश्वर को भुला दिया, तब उन्हें जहरीले सांपों ने अचानक काट लिया था। वे तुरंत परमेश्वर की ओर फिर गए और परमेश्वर ने उन्हें चंगा किया। गिनती 21वां अध्याय। क्या ये अच्छी बात नहीं थी कि उन जहरीले सांपों के कारण लोग परमेश्वर की ओर मुड़े? मैंने एक व्यवसाय के विषय में सुना है जो किसी समय परमेश्वर के बहुत नजदीक था, परंतु जैसे जैसे उनका व्यवसाय बढ़ता गया, वे परमेश्वर से दूर हो गए। उनके चर्च के अगुवे उन्हें इस बात पर बार बार कहते रहे और कोशिश करते रहे कि वह परमेश्वर के पास लौटे, परंतु वो उनके व्यवसाय में काफी व्यस्त रहते थे। एक दिन उनके तीन पुत्रों में से सबसे छोटे पुत्र को एक जहरीले सांप ने डस लिया और वह बच्चा गंभीर रीति से बीमार हो गया, यहां तक कि डॉक्टरों ने भी उसके बचने की आशा छोड़ दी। तब पिता सचमुच बहुत चिंतित हो गया और बच्चे के लिए प्रार्थना करने के लिए चर्च से किसी अगुए को बुला लिया। वह अगुआ एक समझदार व्यक्ति था। वह आए और ये प्रार्थना की, प्रभु इस बच्चे को डसने के लिए जो सांप आपने भेजा उसके लिए धन्यवाद, क्योंकि आपके विषय में सोचने के लिए इस परिवार को मुझे बताने के लिए मौका नहीं मिला होता, जो काम मैं 6 वर्षों में नहीं कर सका वह इस सांप ने एक पल में कर दिया। अब जब उन्होंने अपना सबक सीख लिया है, प्रभु इस बच्चे को पूरी तरह चंगा कर दीजिए और तेरे विषय में सोचने के लिए उन्हें फिर किसी सांप को काटने की जरूरत न पड़े। आमीन। ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर के विषय में तब तक नहीं सोचते जब तक वो अचानक कैंसर से ग्रस्त होकर अस्पताल में नहीं भर्ती होते और फिर वो अचानक परमेश्वर की ओर मुड़ जाते हैं और नया जन्म पा लेते हैं। ठीक न हो सकने वाली बीमारियां, रोग, गरीबी और कई अन्य बुराइयां जो इस संसार में पाई जाती है, लोगों को उनके पापों से फिराने और स्वर्ग में अनंतकालीन घर देने के लिए परमेश्वर द्वारा उपयोग में लाई जाती है। इसी प्रकार से परमेश्वर अपने लोगों को बचाने के लिए और अनंत जीवन देने के लिए उन्हीं बातों का उपयोग करता है जो शैतान उनके जीवन में लाता है। इस प्रकार परमेश्वर शैतान को बार बार मूर्ख ठहराता है। परमेश्वर हमें जो उसके संतान है शुद्ध करने के लिए शैतान का उपयोग करता है। आपके उदाहरण को देखिए। हम जानते हैं कि दुनिया के इतिहास में लाखों लोग आग से जलकर मर गए, तो भी किसी ने आग का उपयोग करना बंद नहीं किया, क्योंकि आग ही से भोजन पकता है और गाड़ियां तथा हवाई जहाज चलते हैं। आग से ही सोने को शुद्ध किया जाता है और जो अन्य किसी वस्तु से नहीं किया जा सकता, इसीलिए आग का सदुपयोग भी किया जा सकता है। या बिजली के विषय में सोचिए, लाखों लोग बिजली के कारण मर गए। बिजली सचमुच खतरनाक है, फिर भी हम सब जानते हैं कि कई अच्छे उद्देश्यों के लिए उसका भी उपयोग किया जा सकता है। इसी प्रकार शैतान का भी उपयोग किया जाता है। जब आदम और हव्वा बनाए गए तब वे निर्दोष थे। यदि उन्हें पवित्र बने रहना था तो उन्हें एक चुनाव करना था और चुनाव करने के लिए उनकी परीक्षा होनी थी, ताकि वे बुराई का इनकार करें और परमेश्वर का चुनाव करें। और यही कारण है कि परमेश्वर ने शैतान को अदन की वाटिका में आकर परीक्षा लेने दी। क्या आपको लगता है कि शैतान को अदन की वाटिका में प्रवेश करने से रोकना परमेश्वर के लिए कठिन था? बिल्कुल नहीं। परंतु बिना परीक्षा आदम पवित्र नहीं रह सकता था, वह हमेशा के लिए निर्दोष रह जाता था। निर्दोषता और पवित्रता में बहुत अंतर है। निर्दोषता या नादानी वो है जो आप एक बच्चे में देखते हैं। यदि आप ये जानना चाहते हैं कि सृजे जाने के समय आदम कैसा था, तो एक बच्चे को देखिए। सभी बुराइयों के विषय में नादान और निर्दोष। एक छोटा सा बच्चा नादान हो सकता है, परंतु पवित्र नहीं, सिद्ध नहीं हो सकता। सिद्ध होने के लिए उस बच्चे को विकसित होना पड़ेगा और बुराई का तिरस्कार करके परमेश्वर का चुनाव करना होगा। ये तब होता है जब हम अपने हृदय में लालच का इनकार करते हैं, ताकि हम चरित्र का विकास कर सके। आज आप जो कुछ भी है वो अभी तक आपके द्वारा किए गए चुनावों के कारण है। यदि आपके आसपास के लोग आपसे बेहतर है, तो वो इसलिए है कि उन्होंने अपने जीवन में आपसे बेहतर चुनाव किए थे। हम सब हर रोज चुनाव करते हैं, और वे चुनाव ही ये निश्चित करते हैं कि आखिर में हम क्या बनने वाले हैं। हव्वा ने वाटिका में एक चुनाव किया। आखिर में उसके चुनाव करने के द्वारा वह वास्तव में ये कह रही थी, मैं अपने शारीरिक अभिलाषाओं को पूरा करना चाहती हूँ जो मुझे शैतान दे रहा है। परमेश्वर की आज्ञाएं जो परमेश्वर ने मुझ पर थोप रखी है, उस बंधन में रहने के बजाय मैं स्वतंत्र रहना चाहती हूँ। परंतु क्या वह स्वतंत्र हो गई? नहीं, वो शैतान की गुलाम बन गई। केवल परमेश्वर की आज्ञा ही हमें वास्तव में स्वतंत्र कर सकती है। उस दिन आदम और हव्वा ने वाटिका में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया, जिससे उन्हें और उनके संतानों को जीवन भर का परिणाम भुगतना पड़ा। सभी निर्णय परिणाम लाते हैं। कभी कभी ऐसे परिणाम जो दुर्भाग्यवश हमारे बच्चों को भी प्रभावित करते हैं। आदम के विषय में उसे और उसकी पत्नी को उनके बाकी जीवन भर के लिए परमेश्वर की उपस्थिति से बाहर भेज दिया गया। इसीलिए ये कल्पना न कीजिए कि वे छोटे निर्णय जो आप लेते हैं वो महत्वहीन है, या उनके परिणाम आप भविष्य में नहीं पाएंगे। जिनके लिए आप आज बीज बो रहे हैं, परमेश्वर आपको जांच और परीक्षा से गुजरने देता है, और इस उद्देश्य के लिए वो शैतान को स्वतंत्र और क्रियाशील रहने देता है। मैं आपको पुराने नियम की पुस्तक अय्यूब से एक उदाहरण देना चाहता हूँ। अय्यूब के अनुभव से हम शैतान के कार्यों के विषय में कुछ सीखते हैं। अय्यूब के पहले अध्याय में हम स्वर्ग में परमेश्वर और शैतान के बीच की बातचीत के विषय में पढ़ते हैं। अय्यूब 1:6 में हम पढ़ते हैं कि एक दिन परमेश्वर के पुत्र स्वर्गदूत परमेश्वर के सामने उपस्थित हुए। उनके बीच शैतान भी आया। परमेश्वर ने उससे पूछा, तू कहां से आ रहा है? अब शैतान के द्वारा दिए गए उत्तर को सुनिए। उसने कहा कि वह पृथ्वी पर कई स्थानों में घूमकर आया है। क्या आप जानते हैं कि शैतान पूरे संसार में क्रियाशील है, और अभी इसी वक्त वो घूम फिर रहा है। कई लोगों का ऐसा विचार है कि शैतान नर्क में रहता है। यदि यही सच होता तो वो यहाँ पृथ्वी पर हमें तकलीफ पहुंचा ही नहीं सकता था। परंतु शैतान नर्क में नहीं रहता। बाइबल हमें सिखाती है कि 3 स्वर्ग है। प्रथम स्वर्ग वह है जिसे हम अंतरिक्ष कहते हैं। तीसरा स्वर्ग तुरंत परमेश्वर की उपस्थिति का स्थान है। दूसरा कुरिंथियों 12:2, जब शैतान परमेश्वर की उपस्थिति से नीचे गिरा दिया गया था, उसे दूसरे स्वर्ग में गिराया गया था। इफिसियों 6:12, नर्क में नहीं और दूसरे स्वर्ग से उसे पृथ्वी पर आने की स्वतंत्रता है। इसीलिए वह अदन की वाटिका में आ सका, और यही कारण है कि आज भी वो और उसकी दुष्ट आत्माएं पृथ्वी पर आ सकती हैं। बाइबल हमें कहती है कि शैतान गरजने वाले एक सिंह के समान इस ताक में रहता है कि किसे फाड़ खाए। वो हमेशा से इस फिराक में रहता है कि जवानों को गलत चुनाव करने के लिए प्रेरित करे। वो उनके जीवन में प्रवेश करना चाहता है ताकि वो उनकी शुद्धता, ईमानदारी और सत्यनिष्ठा से उन्हें वंचित कर दे और इस प्रकार उनके चरित्र को नष्ट करके अंत में उन्हें अनंत काल के सर्वनाश के लिए अपने साथ ले जाए। इसीलिए शैतान पृथ्वी पर गरजता है और आप ये निश्चित रूप से जान सकते हैं कि शैतान हर किसी को देखता रहता है। वो आपको बचपन से देखते आया है और हर समय आपको बुराई करने तथा गलत चुनाव करने के लिए उकसाता रहता है ताकि अंत में वो आपका नाश कर सके। ये वही है जिसने आपको परीक्षाओं में नकल करने को उकसाया और आपके कानों में फुसलाया था, दूसरों के प्रति बदले की भावना रखना सिखाया, आपके माता पिता तथा शिक्षकों से झूठ बोलने को सिखाया, दूसरों की चीजें चोरी करने को सिखाया था और गंदी पुस्तकें पढ़ने को सिखाया था। अय्यूब के पहले अध्याय में हम आगे पढ़ते हैं कि तब परमेश्वर ने शैतान से कहा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है? क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। बेशक शैतान अय्यूब के विषय में सब कुछ जानता था। वास्तव में अय्यूब शैतान के निशाने की सूची में पहले क्रमांक में था। इसीलिए शैतान ने ये उत्तर दिया, क्या अय्यूब परमेश्वर का भय बिना लाभ के मानता है? क्या तूने उसकी और उसके घर की और जो कुछ उसका है उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा? तूने तो उसके काम पर आशीष दी है और उसकी संपत्ति देश भर में फैल गई है। अय्यूब पहला अध्याय 8-10। यह सीखने हेतु हमारे लिए एक अद्भुत पाठ है। परमेश्वर उसके संतानों के चारों ओर बाड़ा बांधता है, तीरा बाड़ा, उनके शरीरों, उनके परिवारों और उनके संपत्ति के चारों तरफ। ये हमारे लिए आशीष की बात है कि उसके संतान होने के नाते हमें तिहरी बाड़े के रूप में उसकी ईश्वरीय सुरक्षा प्राप्त है। नीति वचन 18:10 हमें बताती है कि यहोवा का नाम दृढ़ गढ़ है, धर्मी उसमें भागकर सब दुर्घटनाओं से बचता है। यीशु के नाम में बड़ी सुरक्षा है। शैतान किसी और नाम से नहीं परंतु यीशु के नाम से ही डरता है जिसने उसे कलवरी पर हराया था। जब हमारा जीवन मसीह को समर्पित हो जाता है तो हम मसीह के नाम का उपयोग शैतान को रोकने के लिए कर सकते हैं। बाइबल कहती है, शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे सामने से भाग निकलेगा। अय्यूब की पुस्तक में हम आगे पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने शैतान को अनुमति दी कि अय्यूब को उसके परिवार और उसके संपत्ति को तकलीफ दे। दूसरे शब्दों में परमेश्वर ने हर बार हर बाड़े को थोड़ा सा खोल दिया ताकि अय्यूब की परीक्षा लेने के लिए शैतान को घुसने की अनुमति मिल सके। परमेश्वर ने ऐसा क्यों किया? ताकि अय्यूब सोने के जैसे ताया जा सके। अय्यूब 23:10। परीक्षा के अंत में हम पढ़ते हैं कि अय्यूब और अधिक नम्र तथा धर्मी व्यक्ति बन गया और उसकी अपनी स्वधार्मिकता उसमें से निकल गई। इसीलिए परमेश्वर हमारी भी परीक्षा होने देता है ताकि इन परीक्षाओं से हम और अधिक शुद्ध, नम्र और धर्मी बने, ज्यादा प्रेमी और दयालु बने। ज्यादा तरस खाने वाले कम स्वधर्मी और यीशु के समान ज्यादा बन सके। इसलिए हम देखते हैं कि परमेश्वर के संतानों के पवित्रकरण में शैतान एक अत्यंत महत्वपूर्ण उद्देश्य को पूरा करता है। ये सब बातें हमें कम से कम दो बातें सिखाती है। सर्वप्रथम, परमेश्वर की अनुमति के बिना शैतान परमेश्वर के किसी भी संतान को कभी भी नहीं छू सकता। और दूसरी बात यह है कि जब भी शैतान को अनुमति दी जाती है, वो हमें छुए या किसी भी रीति से दुख पहुंचाए, इसके पीछे हमेशा एक उद्देश्य होता है कि हम अपने जीवन में और अधिक मसीह के समान बने, संसारिक बातों से ज्यादा स्वतंत्र रहे और हमारे विचार ज्यादा स्वर्गीय बातों की तरफ ही रहे। क्या ये जानना शांति की बात नहीं है कि चाहे शैतान हमारे साथ जो भी करे, तो भी सब बातों का नियंत्रण परमेश्वर ही करता है। जवानों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि यदि आप अपना जीवन पूरी रीति से परमेश्वर को सौंप दे, तो ये तिहरा बाड़ा आपके शरीर, परिवार और संपत्ति के चारों तरफ हमेशा रहेगा। शैतान इनमें से किसी भी बाड़े में परमेश्वर की अनुमति के बिना घुस नहीं पाएगा। और जब भी परमेश्वर शैतान को अनुमति देता है, तो आप ये निश्चित रीति से जान लीजिए कि ये आपकी भलाई के लिए ही होगा। इस प्रकार हम देखते हैं कि बाइबल हमें शैतान और उसकी गतिविधियों के विषय में स्पष्ट शिक्षा देती है। हमें डराने के लिए नहीं, परंतु इसलिए कि शैतान के अस्तित्व को बने रहने देने के पीछे हम परमेश्वर के उद्देश्य को समझ पाएं।